ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। भारत ने मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की है। ये सहायता मालदीव को वर्तमान वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। ये निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइजू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान लिया गया। दोनों देशों ने भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग सहित दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दो समझौतों का नवीनीकरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का दृष्टिकोण अपनाया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा मालदीव के लिए प्रथम संकट मोचक की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मालदीव हमारी पड़ोसी प्रथम नीति और सागर विजन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉ मुइजी ने कहा कि वे इस द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते और आर्थिक सहायता प्रदान करने के भारत सरकार के फैसले के आभारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और भविष्य के संकटों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए नए और तकनीकी नवाचार का आह्वान किया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट के चौथे संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को पूरी तरह से मदद देने को प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी और दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के व्यापक प्रबंध किए हैं। आयोग ने रुझानों और परिणामों को बताने के लिए अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in पर समुचित व्यवस्था की है। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। समूचे केंद्र शासित प्रदेश में 20 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इधर हरियाणा में 22 जिलों में 90 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना से 1031 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वामपंथी नक्सलवाद से प्रभावित सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बार सभी का पूरी ताकत से जुटना आवश्यक है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कल चेन्नई में हवाई प्रदर्शन के दौरान मारे गए दर्शकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी स्थिति का सामना करने की पूरी तैयारी की थी और भारतीय वायुसेना को पूरा सहयोग दिया गया था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कोयला खदान में हुए विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह भदोलिया कोयला खदान में विस्फोट की तैयारी के दौरान हुई। घायलों का इलाज सिउड़ी जिला अस्पताल में चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऋषभ सेठी को कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। नित्या मेनन को तमिल फिल्म थिरुचित्रावलम के लिए और मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। माइक्रो आरएनए एक मौलिक सिद्धांत है जो तय करता है कि जीन गतिविधि को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।